انسان سچ میں بدلتا کیسے؟ مطلب کسی پرانی اور گہری عادت کو چھوڑنا یا اپنے مول سوبھاؤ کو پوری طرح سے بدل دینا، یہ ایک ایسی پہیلی ہے جسے منوویگیان اور ادھیاتم دونوں ہی صدیوں سے سلجھانے کی کوشش کرتے آئے ہیں۔
ہاں بالکل، اور یہ سوال ہمیشہ اٹھتا ہے کہ کیا یہ سب کچھ انسان کے اپنے جی توڑ پریاس پر نربھر کرتا ہے یا پھر اس میں کسی ایشوریہ شکتی کا ہاتھ ہوتا ہے۔
صحیح کا، اور آج کی اس گہری چرچا میں ہم اسی پہیلی کے ہر پہلو کو سمجھنے والے ہیں۔ ہمارا جو آج کا شروت ہے وہ ایک بہت ہی پراچین ایتیہاسک اور دھارمک گرنتھ کا وشلیشن ہے۔
جی، ہم بات کر رہے ہیں ڈاکٹر میتھیو ایس ہارمن دوارا فلپیوں یعنی فلپینز 2:12-18 پر دیے گئے نوٹس کی، جس کا وشے ہے اپنے ادھار کا کاریہ پورا کرو یا ورک آؤٹ یور اون سیلویشن۔
اس پوری چرچا کا مکھیہ ادیشیہ اس ورودھاباس کو سمجھنا ہے کہ آدھیاتمک وکاس میں ایشور کی بھومکا اور منشیہ کے ویکتیگت پریاس کے بیچ کا سنتلن آخر کیا ہوتا ہے اور کیسے پرانے نیام کی چیتاونیاں آج بھی پراسنگک ہے۔
بالکل، اور شروعات کرنے سے پہلے یہ صاف کر دیں کہ یہ صرف دھارمک نیموں کا کوئی پلندہ نہیں ہے، بلکہ یہ مانو سوبھاو اور ویکتیگت بدلاو کا ایک گہرا منوویگیانک اور آدھیاتمک ادھیان ہے۔
ہاں، اور ہمارا کام یہاں تتھیوں اور مول وچاروں کا نشپکش وشلیشن کرنا ہے، تو چلیے اس کے ہر پہلو کو سمجھتے ہیں۔
تو اس وشے کی شروعات کرنے کے لیے اس سندرب کو سمجھنا بہت ضروری ہے جہاں سے یہ چرچا نکل کر آتی ہے۔ فلپینز کے دوسرے ادھیائے کے شروعاتی حصے میں مسیح کا ایک پرم ادھارن ستھاپت کیا گیا ہے۔
اچھا، مسیح کے پرم ادھارن سے آپ کا مطلب ہے کہ کیسے انہوں نے خود کو شونیہ کر دیا؟
ہاں بالکل، وہی وہاں بتایا گیا ہے کہ کیسے انہوں نے بنا کسی اہنکار کے مرتیو تک آگیاکاریتا دکھائی۔ اب جب ایک اتنا وشال ادھارن سامنے رکھ دیا گیا ہے تو اگلا قدم یہ سوچنا ہے کہ ایک عام منشیہ کا اس پر کیا ریسپانس ہونا چاہیے۔
صحیح بات ہے۔
یہیں سے ڈاکٹر ہامن کی نوٹس اس منوویگیان کو کھولتے ہیں کہ انسان کے اندر بدلاو کا بیج کیسے بویا جاتا ہے اور آگیاکاریتا کا اصلی روپ کیا ہوتا ہے۔
تو چلیے اس آگیاکاریتا یعنی اوبیڈینس کو تھوڑا کھول کر دیکھتے ہیں، کیونکہ جب بھی اوبیڈینس کی بات ہوتی ہے تو دماغ میں بس نیموں کی ایک لسٹ آ جاتی ہے۔
ہاں، ایک چیک لسٹ جیسی جہاں بس ٹک لگانا ہوتا ہے۔
وہی تو، لیکن یہاں ڈاکٹر ہامن ایک بہت ہی روچک ٹرم استعمال کرتے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ آگیاکاریتا ہوریزونٹل یعنی کشتج نہیں بلکہ ورٹیکل یعنی لمبوت ہونی چاہیے۔
ہوریزونٹل اور ورٹیکل، یہ کافی دلچسپ طریقہ ہے اسے دیکھنے کا،
ہے نا؟ اسے اگر ہم ایک ادھارن سے سمجھیں تو مجھے اسکول کے دن یاد آتے ہیں۔ ایک وہ چھاتر ہوتا ہے جو صرف تب پڑھائی کرتا ہے یا شانت بیٹھتا ہے جب ٹیچر کلاس میں موجود ہوتا ہے۔
ارے ہاں، وہ تو ہم سب نے دیکھا ہے۔
بالکل، وہ صرف ایک ادھیکاری کے سامنے دکھاوا کر رہا ہے۔ یہ ہے ہوریزونٹل آگیاکاریتا، اس کا ویوہار آس پاس کے لوگوں پر نربھر کرتا ہے۔ لیکن ایک وہ چھاتر ہوتا ہے جو اس لیے پڑھتا ہے کیونکہ اس کے اندر اپنے بھوشیہ کے لیے ایک ذمہ داری کا احساس ہے،
بھلے ہی کمرے میں کوئی دیکھنے والا ہو یا نہ ہو۔
ایک دم صحیح، یہ ورٹیکل آگیاکاریتا ہے،
اور یہی وہ مول بندو ہے جہاں سے ویکتیگت بدلاو کی اصل شروعات ہوتی ہے۔ جب پال فلپی کے لوگوں کو پتر لکھ رہے تھے تو وہ انہیں یہی یاد دلا رہے تھے، ان کا اچھا آچرن صرف پال کی موجودگی پر نربھر نہیں ہونا چاہیے۔
مطلب ان کی جواب دہی سماج کے سامنے نہیں تھی؟
بالکل نہیں، اصلی آگیاکاریتا ورٹیکل ہوتی ہے، جس کا سیدھا سا ارتھ یہ ہے کہ انسان کی جواب دہی اس کے آس پاس کے سماج یا کسی نیتا کے سامنے نہیں بلکہ سیدھے ایشور کے سامنے ہے۔
تو اگر کوئی صرف سماج کے ڈر سے صحیح کام کر رہا ہے تو اس کا بدلاؤ بہت کھوکھلا ہے۔
ہاں، وہ بس ایک سطح ہے، پر جب یہ احساس ہوتا ہے کہ ہر ایک وچار ہر ایک کرم کا حساب ایک پوتر ایشور کو دینا ہے تو وہ آگیاکاریتا دکھاوے کے محتاج نہیں رہتی، وہ انسان کے چرتر کا حصہ بن جاتی ہے۔
یہ ہوریزونٹل سے ورٹیکل کا جو شفٹ ہے نا، یہ واقعی میں انسان کے سوچنے کا طریقہ پوری طرح بدل سکتا ہے۔ لیکن یہیں پر ایک اور ایسی بات آتی ہے جس نے مجھے پڑھتے وقت تھوڑا الجھن میں ڈال دیا تھا۔
اچھا،
وہ کون سی بات تھی؟
جو ورس 12 ہے اس میں ایک بہت ہی بھاری فریز کا استعمال ہوا ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ اپنے ادھار کا کاریہ ڈر اور کمپن کے ساتھ پورا کرو، مطلب فیئر اینڈ ٹریمبلنگ۔
ہاں، یہ شبدوں کا چناؤ کئی لوگوں کو چونکا دیتا ہے۔
بالکل، اب ڈاکٹر ہامن نے اس کے تین مکھیہ ارتھ بتائے ہیں۔ پہلا، ایشور کی پوترتا اور انند پریناموں کا احساس ہونا۔ دوسرا، ایک دھرمی ایشور کے سامنے جواب دہ ہونا۔ اور تیسرا، اس واستوکتا کو سویکار کرنا کہ ایک دشمن ہے جو پوری طرح سے وناش کے لیے تتپر ہے۔
یہ تینوں بندو بہت گہرے ہیں، हैं तो, लेकिन यहां मेरा एक सवाल है, अगर कोई भी इंसान लगातार डर और कंपन की स्थिति में रहेगा तो क्या वो प्रेरित होने के बजाय पूरी तरह से लकवाग्रस्त या कहें पैरालाइज नहीं हो जाएगा?
इससे एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है,
क्योंकि मनोविज्ञान तो यही कहता है कि डर कोई लंबा चलने वाला मोटिवेटर नहीं होता। लोग डर के मारे फाइट और फ्लाइट मोड में चले जाते हैं, तो क्या ये फियर इंसान को डराकर पीछे नहीं धकेल देगा?
देखिए, यहीं पर अनुवाद और प्राचीन भाषा के संदर्भ को गहराई से समझना बहुत जरूरी हो जाता है। जब प्राचीन ग्रंथों में, खास तौर पर बिब्लिकल संदर्भ में, डर और कंपन का जिक्र आता है तो ये आतंक या खौफ नहीं है।
तो फिर ये क्या है?
ये कोई ऐसा डर नहीं है जो इंसान को पैरालाइज कर दे। इसे रेवरेंस या एक गहरा विस्मय, मतलब एक गहरी इज्जत और आदर कहना ज्यादा सटीक होगा।
अच्छा, मतलब एक तरह का awe, AWE वाला भाव।
बिल्कुल, ये वो भावना है जब कोई अपने छोटेपन और किसी बहुत विशाल अनंत शक्ति की महानता का एक ही समय पर अनुभव करता है। ये खौफ से ज्यादा सम्मान है।
समझ गया। और वो जो तीसरा पॉइंट था, एक दुश्मन द्वारा विनाश की संभावना का डर, उसका क्या?
वो डर भगाने के लिए नहीं बल्कि सतर्क करने के लिए है। इसे ऐसे समझा जा सकता है कि अगर कोई एक ऐसी सड़क पर चल रहा है जहां खुली खाई है, तो उस खाई का डर उसे चलने से नहीं रोकता।
हाँ, बल्कि उसके कदमों को होशियार और सतर्क बनाता है।
बिल्कुल सही, ये एक प्रोटेक्टिव अवेयरनेस है। इंसान को इस बात का पूरा भान होना चाहिए कि आध्यात्मिक यात्रा में लापरवाही के परिणाम भयंकर हो सकते हैं।
अरे वाह, मतलब ये डर बेड़ियां नहीं डालता बल्कि आंखें खोलता है।
हाँ, ये आपको जगा कर रखता है।
तो चलिए, इस वर्टिकल आज्ञाकारिता और सतर्कता के साथ आगे बढ़ते हैं। अगर किसी को अपना उद्धार पूरा करना है, मतलब वर्कआउट करना है, तो सबसे बड़ा और व्यावहारिक सवाल ये आता है कि इस प्रयास के लिए शक्ति कहाँ से आती है?
क्योंकि अगर सिर्फ इंसान की विल पावर की बात की जाए तो हम सब जानते हैं कि विल पावर कितनी जल्दी खत्म हो जाती है।
वही तो, इंसान की इच्छा शक्ति तो कुछ ही दिनों में दम तोड़ देती है। यहीं पर मानव प्रयास और ईश्वरीय कृपा के बीच का संबंध बहुत ही दिलचस्प हो जाता है।
हाँ, ये एक बहुत ही नाजुक संतुलन है,
क्योंकि अगर कोई सिर्फ वर्कआउट योर ओन सेल्वेशन पढ़े तो ऐसा लग सकता है कि ईश्वर ने शुरुआती काम कर दिया और अब बाकी का सफर इंसान को अकेले अपने दम पर अपनी मेहनत से पूरा करना है। एक तरह का अकेलापन महसूस हो सकता है,
और वही सबसे बड़ी गलतफहमी होती है। डॉक्टर हामन वर्स 13 का हवाला देकर इस पूरे विरोधाभास को सुलझाते हैं। वो स्पष्ट करते हैं कि पॉल का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि अब सब कुछ इंसान के कंधों पर है।
अच्छा, तो फिर वर्स 13 क्या कहता है?
वो कहता है कि ईश्वर है जो तुम्हारे अंदर काम करता है, और यहाँ ईश्वर दो चीजें प्रदान करता है जो किसी भी बदलाव के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। पहला, आज्ञा मानने की इच्छा यानी डिजायर, और दूसरा, आज्ञा मानने की शक्ति यानी पावर।
मतलब इंजन भी वही दे रहा है और फ्यूल भी।
बिल्कुल, इस बात को और गहराई से समझने के लिए नोट्स में पुराने नियम की एक किताब इजेकियल 36 का हवाला दिया गया है।
इजेकियल 36? हाँ, मैंने पढ़ा है।
उस ऐतिहासिक पाठ में ईश्वर वादा करता है कि वो इंसान के अंदर से पत्थर का दिल निकालकर मांस का दिल देगा, और ऐसी शक्ति देगा कि इंसान उसके नियम पर चल सके।
ये पत्थर का दिल होने को मतलब क्या है यहाँ पर?
पत्थर का दिल होने का मतलब है ऐसी स्थिति जहाँ इंसान अच्छाई या अध्यात्म के प्रति पूरी तरह से ठंडा और असंवेदनशील हो, उसे गलत करने में कोई पछतावा नहीं होता।
और मांस का दिल?
मांस का दिल होने का अर्थ है संवेदनशील होना, जिंदा होना। ये इच्छा और शक्ति का वादा ही असल में वो इंजन है जो किसी भी व्यक्ति की आध्यात्मिक यात्रा को आगे बढ़ाता है।
ये इंजन वाला विचार बहुत सटीक है।
हाँ।
और इस पूरे मैकेनिज्म को समझने के लिए मुझे एक और उदाहरण याद आ रहा है।
हाँ।
जिसे हम एक सेल बोट यानी पाल नाव से जोड़ सकते हैं।
सेल बोट, ये काफी विजुअल उदाहरण है, बताइए।
देखिए, कोई भी नाविक या सेलर हवा को नियंत्रित नहीं कर सकता। हवा कब चलेगी, कितनी तेज चलेगी, ये उसके हाथ में नहीं है।
हाँ, बिल्कुल नहीं।
हवा यहाँ पर ईश्वर की शक्ति या ईश्वरीय कृपा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि नाविक हाथ पर हाथ धरे बैठा रहे। उसे नाव के पाल यानी सेल्स तो खोलने ही पड़ेंगे।
बिना पाल खोले नाव आगे कैसे बढ़ेगी?
वही तो, उसे नाव को सही दिशा में रखना पड़ेगा ताकि जब हवा चले तो उस पाल से टकराकर नाव को आगे बढ़ा सके। अगर पाल बंद है तो कितनी भी तेज हवा क्यों ना हो, नाव अपनी जगह से एक इंच नहीं हिलेगी।
बहुत ही शानदार एनालॉजी है।
डॉक्टर हामन ने जिन चीजों को कृपा के साधन या मीन्स ऑफ ग्रेस कहा है, जैसे प्रार्थना करना, धर्म ग्रंथ पढ़ना और दूसरों की संगति में रहना, ये सब वही पाल खोलने जैसा है।
हाँ, ये कोई जादुई मंत्र नहीं है।
बिल्कुल नहीं, ये साधन अपने आप में कोई जादू नहीं है, पर ये उस इंसान को एक ऐसी स्थिति में लाके खड़ा कर देते हैं जहां ईश्वरीय कृपा उस पर काम कर सके। इसे किसी ड्यूटी की तरह चेकलिस्ट में टिक नहीं करना है, बल्कि ये खुले पाल के साथ हवा का इंतजार करना है।
ये सेलबोट का उदाहरण उन दो सबसे बड़ी गलतियों को बहुत खूबसूरती से उजागर करता है जो लोग इस यात्रा में अक्सर करते हैं।
अच्छा, वो दो गलतियां कौन सी हैं?
डॉक्टर हार्मन बताते हैं कि लोग दो अलग अलग एक्सट्रीम्स यानी ध्रुवों पर चले जाते हैं। पहली गलती है सब कुछ ईश्वर पर छोड़ दो, जिसे हम लेट गो एंड लेट गॉड कहते हैं।
मतलब खुद कुछ मत करो।
बिल्कुल, लोग सोचते हैं कि उन्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस एक रात कोई चमत्कार होगा और वो पूरी तरह से बदल जाएंगे। ये वो स्थिति है जहां नाव में पाल तो है पर उसे खोला ही नहीं गया है।
हाँ, वो बिना प्रयास के बदलाव की उम्मीद कर रहे हैं,
जो कि इस टेक्स्ट के मुताबिक असंभव है। और दूसरी गलती बिल्कुल इसके उलट है, सिर्फ अपनी मेहनत पर निर्भर रहना, जिसे ट्राई हार्डर अप्रोच कहते हैं।
मतलब बस अपनी मेहनत से चप्पू चलाते रहना।
एकदम सही। कुछ लोग सोचते हैं कि और ज्यादा नियम बनाने से, खुद पर और ज्यादा दबाव डालने से वो पवित्र हो जाएंगे। वो लगातार चप्पू चलाने की कोशिश करते हैं बिना हवा का सहारा लिए,
और अंत में थक्कर टूट जाते होंगे, मतलब बर्नआउट हो जाता होगा।
हाँ, सच्चाई इन दोनों के बीचों बीच है। प्रयास जरूरी है, पाल खोलना जरूरी है, लेकिन उस प्रयास को सार्थक बनाने वाली शक्ति ईश्वर की ओर से मिलती है।
यहाँ अगर एक बड़ा ही लॉजिकल मोड़ आता है इस पूरी चर्चा में, क्योंकि अगर ये सच है कि ईश्वर इंजन भी दे रहा है और फ्यूल भी, तो फिर चीजें बिगड़ती कहाँ हैं?
हाँ, रुकावट कहाँ आती है?
इंसान इस यात्रा में फेल कहाँ होता है? यहाँ पॉल एक बहुत ही कठोर और चौंकाने वाली चेतावनी देते हैं। वो कहते हैं भी हर काम बिना बड़बड़ाए यानी ग्रम्बलिंग और बिना विवाद किए करो।
ये एक बहुत ही स्पेसिफिक निर्देश है।
यहाँ पर बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि सच कहूँ तो इस पर मेरा थोड़ा पुशबैक है।
बताइए, क्या खटक रहा है आपको?
देखिए, थोड़ा बहुत कंप्लेन करना या किसी खराब परिस्थिति पर बड़बड़ाना तो बड़ा नेचुरल सा ह्यूमन रिस्पॉन्स लगता है। ट्रैफिक हो, मौसम खराब हो या जिंदगी में मुश्किलें चल रही हों, लगभग हर इंसान थोड़ा बहुत तो ग्रम्बल अरका ही है।
ये बात तो है।
तो इस एक छोटी सी आदत को सीधे तौर पर पुराने नियम में इसराइल द्वारा किए गए ऐतिहासिक विद्रोह के बराबर क्यों माना जा रहा है? इस आम सी लगने वाली चीज को इतना बड़ा मुद्दा क्यों मनाया जा रहा है?
अगर हम इसे एक बड़े संदर्भ में देखें तो बात सिर्फ मौसम या ट्रैफिक की शिकायत करने तक सीमित नहीं है। मनोविज्ञान और धर्मशास्त्र दोनों ये मानते हैं कि लगातार शिकायत करना इंसान के सोचने के तरीके को पूरी तरह से बदल देता है।
अच्छा, वो कैसे?
डॉक्टर हार्मन इसके पीछे के बिब्लिकल संदर्भ को समझाते हैं। पुराने नियम में बड़बड़ाना या ग्रम्बलिंग कोई छोटी बुरी आदत नहीं थी, बल्कि एक समरी टर्म यानी सारांश शब्द बन चुका था।
समरी टर्म मतलब ये किसी बड़ी घटना को दर्शाता है।
बिल्कुल। जब इसराइल के लोग मिस्र की गुलामी से आजाद होकर जंगल में सफर कर रहे थे, तो उन्होंने बार बार खाने, पानी और हालात के लिए ईश्वर और मूसा के खिलाफ बड़बड़ाना शुरू कर दिया था।
हाँ, ये हमने पढ़ा है एक्सोदस की किताब में।
सही कहा। और न्यू टेस्टामेंट में भी पहले कुरिन्थियों 10 और यूहन्ना 6 में इसका जिक्र है। हर जगह इस बड़बड़ाने को उनकी सबसे बड़ी विफलता के रूप में दर्शाया गया है।
मतलब आजाद होने के बाद भी वो आजाद नहीं थे।
बिल्कुल, वो गुलामी से तो बाहर आ गए थे, लेकिन उनके दिमाग अभी भी गुलाम थे। पॉल जब इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो वो अपने पाठकों को ठीक वही जंगल का वक्त याद दिला रहे हैं।
तो ये जो शिकायत करने की आदत है, ये सिर्फ हालात से निराशा नहीं है?
नहीं, ये दरअसल इस बात का घोषणा पत्र है कि इंसान को ईश्वर के प्रावधानों, उनके प्रोविजंस और उनकी नियत पर कोई भरोसा नहीं है। ये एक तरह से ईश्वर पर सवाल उठाना है कि उसने जो परिस्थिति दी है वो गलत है।
अरे बाप रे, ये वाकई में चिंता का विषय है जब इस नजरिए से देखा जाए। मतलब मेरी शिकायत मेरी बाहरी परिस्थिति के बारे में होती ही नहीं,
तो किसके बारे में होती है?
मेरी शिकायत दरअसल मेरी अंदरूनी स्थिति का आईना है, जो ये दिखाता है कि मेरा विश्वास कितना कमजोर है।
बिल्कुल सटीक बात कही आपने।
जब मैं बड़बड़ाता हूँ तो मैं घूम फिर कर यही कह रहा होता हूँ कि मैं अपनी जिंदगी का बेहतर मालिक बन सकता था। इसी बिंदु पर डॉक्टर हार्मन ने एक बहुत ही पावरफुल हवाला दिया है, व्यवस्था विवरण यानी ड्यूटरोनमी 32 का।
हाँ, मूसा का गीत।
बिल्कुल, उसमें मूसा के गीत में इसराइल को टेढ़ी और कुटिल पीढ़ी और कलंकित यानी ब्लेमिश्ड बताया गया था। ये वो लोग थे जो चमत्कार देखने के बावजूद बड़बड़ाते रहे।
और अब पॉल ठीक उसी प्राचीन भाषा का इस्तेमाल करते हैं।
पॉल कहते हैं कि मसीह के कारण विश्वासी लोग अब इस दुनिया में निष्कलंक यानी विदाउट ब्लेमिश बन सकते हैं। ये तो वही बात हुई कि जो इसराइल जंगल में टेस्ट फेल कर गया था, अब लोगों के पास उस फेल किए हुए टेस्ट को पास करने का मौका है।
बहुत सही जोड़ा आपने से। और इस फेल किए हुए टेस्ट को पास करने का सबसे बड़ा नतीजा क्या होता है?
शायद दुनिया में कुछ अलग दिखना।
हाँ, इसका नतीजा ये होता है कि अंधकार से भरी इस दुनिया में एक चमक पैदा होती है। डॉक्टर हार्मन स्थिति को समझाने के लिए रोशनी की तरह चमकने यानी शाइनिंग एज लाइट का जिक्र करते हैं।
ये शाइनिंग एज लाइट्स वाला कॉन्सेप्ट काफी पोएटिक लगता है
ना? जरा तसव्वुर कीजिए, जब आसपास की सारी दुनिया किसी न किसी वजह से शिकायत कर रही हो और कोई एक व्यक्ति बिना बड़बड़ाए शांतिपूर्वक अपना काम कर रहा हो, तो वो भीड़ में बिल्कुल अलग ही दिखता है।
वो सच में एक रोशनी की तरह होता है।
इसके लिए दो पुराने नियम के हवाले भी दिए गए थे ना? हाँ, पहला हवाला दानियल 12 से है, जो पुनरुत्थान और तारों की तरह चमकने की बात करता है, यानी एक अनंत महिमा का वादा।
और दूसरा यशाया से था, है ना?
बिल्कुल, यशाया 49 से, जहाँ राष्ट्रों के लिए प्रकाश बनने को कहा गया है, यानी दूसरों को रास्ता दिखाने का काम।
और इसी प्रकाश को बनाए रखने के संदर्भ में डॉक्टर हामिन एक और विशिष्ट फ्रेज का विश्लेषण करते हैं, जीवन के वचन को मजबूती से पकड़ना या होल्डिंग फास्ट टू द वर्ड ऑफ लाइफ।
हाँ, और यहाँ अनुवाद की एक बहुत ही बारीक बात सामने आती है।
वो कैसे?
मूल भाषा का जो शब्द यहाँ इस्तेमाल हुआ है, उसके दो अलग अलग अर्थ निकल सकते हैं। कुछ लोग इसे होल्डिंग फास्ट मानते हैं, जिसका मतलब है मजबूती से पकड़ना,
जो दानियल वाले विचार से मेल खाता है।
सही कहा, बाहरी दबाव चाहे जितना भी हो, इंसान को सच्चाई को कस के पकड़े रहना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग इसे होल्डिंग आउट के रूप में अनुवाद करते हैं, जिसका अर्थ है दूसरों के सामने पेश करना।
ये यशाया के हवाले से जुड़ता है, जहाँ प्रचार करने पर जोर दिया गया है।
बिल्कुल, लेकिन सच्चाई ये है कि इन दोनों में से किसी एक को चुनने की जरूरत नहीं है, ये दोनों ही बातें सच हैं।
मतलब अगर किसी ने सच्चाई को मजबूती से पकड़ा ही नहीं है, तो वो उसे दुनिया के सामने पेश कैसे करेगा? और अगर पेश नहीं कर रहा, तो पकड़ने का फायदा ही क्या?
एकदम सही। और यहाँ जो बात सबसे ज्यादा रोचक है, वो ये है कि पॉल इस पूरी आज्ञाकारिता और रोशनी बनने के इस पूरे क्रम को एक अंतिम मंजिल की ओर ले जाते हैं,
जिसे वो मसीह का दिन कहते हैं।
हाँ, द डे ऑफ क्राइस्ट। ये मानव इतिहास का वो आखिरी दिन माना जाता है, जब न्याय और उद्धार का काम पूरी तरह से संपन्न होगा। ये कोई आम दिन नहीं है, बल्कि सभी कठिनाइयों की चरम परिणति है।
और इसी अंत को समझाने के लिए पॉल आखिर में बलिदान की एक कल्पना यानी सैक्रिफिशियल इमेजरी पेश करते हैं। वह 17 में वो अपनी मौत की तुलना एक पेय भेंट या ड्रिंक ऑफरिंग से करते हैं।
हाँ, और ये ड्रिंक ऑफरिंग वाला कॉन्सेप्ट प्राचीन दुनिया के लोगों के लिए बहुत चर्चित था,
पर आज के आधुनिक दौर में किसी को ये थोड़ा अजीब लग सकता है। डॉक्टर हार्मन ने इसे कैसे समझाया?
प्राचीन काल की बलिदान प्रथाओं में जब कोई मुख्य पशु या अनाज की भेंट वेदी पर चढ़ाई जाती थी, तो उस बलिदान को और पूर्ण बनाने के लिए उसके ऊपर दाख रस यानी वाइन उड़ेला जाता था। इसे ही पेय भेंट कहते थे।
अच्छा, तो पॉल का नजरिया यहाँ पर क्या है? आम तौर पर तो कोई भी इंसान अपनी शहादत को एक ट्रेजेडी के रूप में देखेगा।
बिल्कुल, एक दुख भरे अंत के रूप में, लेकिन पॉल ऐसा नहीं करते।
तो वो इसे कैसे देखते हैं?
वो फिलिपियों से कह रहे हैं कि तुम्हारा जो विश्वास है, वो अपने आप में मुख्य बलिदान है, और अगर इस यात्रा में मेरी जान भी चली जाती है, तो वो सिर्फ एक छोटी सी पेय भेंट है जो तुम्हारे उस महान कार्य के ऊपर डाली जाएगी।
वाओ, इस पूरी दृष्टि में कहीं भी रोने या अफसोस करने का भाव नहीं है।
बिल्कुल नहीं, बल्कि ये तो खुशी मनाने और एक साथ मिलकर आनंद लेने का निमंत्रण है।
ये दृष्टिकोण सच में किसी भी महान लक्ष्य के प्रति एक अटूट समर्पण का प्रमाण है। जब कोई व्यक्ति किसी बड़े उद्देश्य को अपने अस्तित्व से ऊपर मानता है, तभी वो ऐसा सोच सकता है।
सही कहा। और अगर हम इन सभी बातों का सार निकालें और आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ें, जहां व्यावहारिक कदम की बात आती है, तो डॉक्टर हार्मन कुछ बहुत ही सटीक निष्कर्ष निकालते हैं।
पहला निष्कर्ष शायद ईश्वर के स्वभाव के बारे में था।
हाँ, अक्सर लोग सोचते हैं कि ईश्वर इंसान की गलतियों से परेशान रहता है, लेकिन नोट्स स्पष्ट करते हैं कि ईश्वर इंसान के भीतर काम करने में आनंद लेता है।
मतलब ही डिलाइट्स इन इट।
बिल्कुल, वो कोई ऐसा रिलक्टेंट या अनिच्छुक भगवान नहीं है जो मजबूरी में बोझ उठा रहा हो। बदलाव की ये प्रक्रिया उसके लिए खुशी का विषय है।
और इसी के साथ डॉक्टर हार्मन ने शैतान के एक बहुत बड़े झूठ को पहचानने की बात भी की है।
वो झूठ कि इंसान कभी नहीं बदल सकता।
वही तो, हम सब ने कभी ना कभी निराशा में ये महसूस किया होगा कि बदलाव असंभव है।
लेकिन असली बदलाव अक्सर रातों रात नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि किसी पे जादू की छड़ी घुमाई गई और वो एकदम पवित्र हो गया।
हाँ, zapped into bodliness जैसा कुछ नहीं होता।
असल में ये एक लंबी जानबूझकर की गई लड़ाई है जिसमें समय लगता है।
और इस लंबी लड़ाई को व्यावहारिक रूप देने के लिए डॉक्टर हार्मन एक बहुत ही ठोस कदम का सुझाव देते हैं।
वो क्या है?
उनका कहना है कि पूरी जिंदगी को एक ही दिन में बदलने की कोशिश करने के बजाय अपने जीवन के किसी एक विशिष्ट संघर्ष वाले क्षेत्र को चुनना चाहिए।
मतलब सिर्फ एक एरिया जहाँ सबसे ज्यादा कठिनाई आ रही।
हाँ, और फिर उस एक क्षेत्र में ईश्वर से उसे बदलने की इच्छा और शक्ति मांगनी चाहिए और साथ ही दूसरों से मदद भी लेनी चाहिए।
तो इन सब का आखिर क्या मतलब है?
आज के इस विश्लेषण के जरिए एक बात बहुत गहराई से उभर कर सामने आती है कि व्यक्तिगत बदलाव एक लंबी पार्टनरशिप है
जिसमें शक्ति कहीं और से आती है लेकिन प्रयास हमारा होता है।
बिल्कुल। लेकिन इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक ऐसा विचार सामने आता है जो सोचने का एक बिल्कुल नया नजरिया देता है।
वो क्या?
हमने बात की कि कैसे बदलाव लाया जाता है और कैसे शिकायत करने से बचना चाहिए। लेकिन सर, इस बारे में सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि हमारे दैनिक जीवन की जिन मुश्किलों और परिस्थितियों के लेकर हम सबसे ज्यादा शिकायत करते हैं या बड़बड़ाते हैं, चाहे वो करियर हो या रिश्ते, वही असल में वो कृपा के साधन या वो जंगल हो?
ओ, ये सच में बहुत गहरा विचार है।
है ना? क्या ये संभव है कि जिसे हम एक रुकावट समझ रहे हैं उसी का उपयोग ईश्वर हमारे भीतर उस उद्धार को आकार देने या वर्कआउट करने के लिए कर रहा हो?
ये तो पूरा नजरिया ही पलट देता है।
बिल्कुल। और इसी विचारोत्तेजक सवाल के साथ आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त होता है। श्रोताओं के लिए ये सोचने का एक बहुत बड़ा विषय है।
सच में शुक्रिया इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए।
आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले विश्लेषण में।